ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेकपा एमआलए में जारी विवाद के समाधान के लिए गठित कार्यदल की बैठक आज के लिए हुई स्थगित। लगातार हो रही बारिश के कारण आए बाढ़ और भूस्खलन में विभिन्न जिलों में 7 लोगों की हुई मौत, कई हुए विस्थापित। देशभर में आज 1875 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित 29 को ही मौत। 1286 हुए संक्रमण मुक्त। और अफगान सुरक्षा बलों ने बादगीस की राजधानी से आतंकियों को खदेड़ा, संघर्ष में 69 तालिबानी हुए ढेर। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमआलए में जारी विवाद समाधान के लिए गठित कार्यदल की आज की बैठक स्थगित हो गई। इससे पूर्व कार्यदल की आज दोपहर हुई बैठक में पार्टी के भीतर के विवाद को सहमति के आधार पर अंतिम रूप देने की तैयारी हुई थी। प्रधानमंत्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट के कुलपति केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि नेपाल की प्राकृतिक साधन स्रोत और पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग किया जाए तो विश्व स्तर का आविष्कार करने में नेपाली वैज्ञानिक पूर्ण रूप से सक्षम हो सकते हैं। बीते साल विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्रों में उदाहरणीय काम करने वाले लोगों के सम्मान में नास्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक को अपनी अपनी प्रतिभाओं का जानकर अपनी रूचि अनुरूप विषयों का चयन कर अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए अभाव और विभेद रहित शांत, सभ्य और मानवीयता युक्त समाज की आवश्यकता है और इसके लिए सभ्यता के गौरवपूर्ण इतिहास और वैदिक काल के समतामूलक समाज अत्यंत जरूरी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रिपरिषद विस्तार को अपने स्वविवेक का अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को लिखित जवाब भेजा है। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई 17 सूत्रीय लिखित जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वविवेक का अधिकार के विषय में संविधान में उल्लेख किया गया है। बता दें कि मंत्रिपरिषद विस्तार संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कारण बताओ आदेश जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया। भारी बारिश के बाद आई बाढ़, भूस्खलन और डुबान से देश के विभिन्न स्थानों में 7 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़, भूस्खलन और डुबान से दारचूला में 3, पालपा में 2, तनहू और दांग में 1-1 की मौत हो गई है। ये जानकारी पुलिस ने दी है। पालपा के तिनाव गांव पालिका वार्ड नंबर 5 गिट्टी खान स्थित सिद्धार्थ राजमार्ग में आई भूस्खलन में 4 घर दब गए जिससे 2 की मौत हो गई। मरने वालों में 45 वर्षीय वीर बहादुर गुरुंग और रमेश परियार के 4 वर्षीय बेटे आरोप परियार शामिल हैं। भूस्खलन में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के लिए लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में से 1 की हालत गंभीर है। इसी तरह तनहों में 1 की मौत हो गई जबकि अन्य 2 लापता हुए हैं। तनहों के रिसिंग गांव पालिका वार्ड नंबर 7 ददीवन में भूस्खलन से दबने से स्थानीय 52 वर्षीय देवी सरा थापा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय तनहों के डीएसपी युवराज तिमिल सेना ने दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी का बहाव बढ़ने के बाद जिला प्रशासन कार्यालय चितवन ने आज एक सूचना जारी करते हुए नारायणी, राप्ती, रियू सहित बड़ी नदियों में पानी का सतह बढ़ने के बाद तटीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को उच्च सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। इसी तरह निरंतर बारिश की वजह से माड़ी के 168 घर डुबान में हैं। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र द्वारा दी गई जानकारी अनुसार माड़ी नगर पालिका 1, 3, 4, 6 और 7 के सभी घर डुबान में हैं। हालांकि यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित किया जा चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण मोरंग जिले के रतुआ माई नगर पालिका 7 की राजावासा स्थित रतुआ माई नदी का बांध टूट गया है। इस वजह से सिजवा गांव के करीब 20 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में रखा गया है। इसी तरह झापा की माई खोला में पानी का स्तर बढ़ने से गांव पालिका वार्ड नंबर 1 की मिलन बस्ती डुबान में है। बस्ती डुबान में होने के बाद वहां के 85 परिवारों को सशस्त्र प्रहरी ने सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरण किया है। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुमन शर्मा ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। देश में आज 1875 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि आज ही 1283 संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। तथ्यांक अनुसार अब तक 94.5% संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इसी तरह कोरोना संक्रमण के आज के कारण 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 9320 पहुंच गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के कारण 60 साल के अधिक की उम्र वाले व्यक्तियों की मृत्यु होने की दर उच्च है। अब तक इस उम्र के 4995 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोविड 19 महामारी से व्यवसायियों ने उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हुए यातायात व्यवसायियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ज्ञापन पत्र सौंपा है। आज सिंह दरबार से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय पहुंचकर यातायात व्यवसायी ने 7 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा है। कर्णाली प्रदेश सभा की बैठक आज भी स्थगित हुई है। आर्थिक वर्ष वार्षिक बजट के विषय पर विचार विमर्श करने की कार्यसूची होने के बावजूद भी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के अवरोध के कारण बगैर कार्यसूची में प्रवेश किए बैठक स्थगित हो गई है। श्रावण 31 से उन मोबाइल सेट की सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा जिन मोबाइल सेट का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI पंजीकरण नहीं किया गया है। भंसार की आंखों में धूल झोंककर देश में लाई जाने वाली मोबाइल सेट में रोक लगाने के लिए IMEI पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ये जानकारी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने तालिबान के कब्जे में आए बाद किस प्रांत की राजधानी काराए नव को फिर कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा बलों ने वहां से आतंकियों को खदेड़ दिया। शहर पर कब्जा करने के दौरान सुरक्षा बलों ने 69 आतंकियों को मार डाला जबकि 23 घायल हो गए हैं। प्रांतीय राजधानी को दोबारा नियंत्रण में लेने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत लगा दी। इस अभियान में सेना के लिए कमांडो के साथ ही हवाई हमले भी किए गए हैं। बता दें कि बुधवार को काराए नव पर तालिबानी आतंकियों ने अब कब्जा कर लिया था। रॉयटर्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अहमद ने कहा है कि अब काला नव पर हमारा नियंत्रण पूर्ण है। तालिबान से भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि तालिबान अब तक 100 जिलों पर कब्जा कर चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेकपा एमाले में जारी विवाद के समाधान के लिए गठित कार्यदल की बैठक आज के लिए हुई स्थगित। लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में विभिन्न जिलों में 7 लोगों की हुई मौत, कई हुए विस्थापित। देशभर में आज 1875 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। संक्रमित 29 की हुई मौत, 1286 हुए संक्रमण मुक्त। और अफगान सुरक्षा बलों ने बादगिस की राजधानी से आतंकियों को खदेड़ा, संघर्ष में 69 तालिबानी हुए ढेर। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।